इस भौतिक जगत में हम दो चीजें देखते हैं, एक है जड़ पदार्थ अचेतन, जो अचेतन है जिसमें कोई चेतना नहीं है, जैसे ये टेबल, इसमें चेतना है, ये अचेतन है, मतलब जड़ है, इसलिए कहा जाता है कि भौतिक पदार्थ जो है वो सब जड़ होते हैं, जड़ पदार्थ। और यह सारे जो कुछ है हम देख रहे हैं, जैसे ये टेबल, ये कुर्सी, ये जमीन, ये सब जड़ है। बल्कि हम और आप, हम जड़ है, हम चेतन है, हमें जीवन है। तो ये शरीर जो है, ये शरीर है जड़,
I just started off and carry on because.
ये शरीर, ये भौतिक शरीर, यद्यपि ये जड़ पदार्थ से बना हुआ है, पंचभूत से बना हुआ है, मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, परंतु ये शरीर चेतन है। ये शरीर में हम कहते हैं कि ये जीवित है, मतलब इस शरीर में जीवन है। तो इस शरीर में अब जीवन है, बल्कि एक समय आएगा जब ये जड़ शरीर फिर से जड़ बन जाएगा। कब? मृत्यु के समय, मृत्यु के पश्चात। तब हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे वो चले गए हैं, है ना, देहांत हो गए हैं। तो अब सवाल पैदा होता है, वो कौन है जो इस शरीर को चेतन बनाया था? वो कौन है? आत्मा। आत्मा जब तक शरीर में रहता है तो ये भौतिक शरीर चेतन बन जाता है, और जब आत्मा शरीर छोड़कर चला जाता है तो ये शरीर से चेतना लुप्त हो जाता है, ये शरीर का मृत्यु होता है, मतलब वो ये शरीर फिर से अचेतन बन जाता है। तो ये जो शरीर में जीवन का संचार कर रहा है, जिसके कारण इस भौतिक शरीर में भी चेतना है, वो कौन है, वो कहाँ से आए हैं, उसका स्थिति कैसी है, इस विषय में ज्ञान प्राप्त होना जरूरी है। ये जो ज्ञान है, आत्मा का जो ज्ञान है, उसे आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है, आध्यात्मिक, आत्मा के विषय का जो ज्ञान है। तो इस आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होना ही मनुष्य जीवन का असल उद्देश्य होना चाहिए। जब तक ना होता है तब तक उसे हमारे शास्त्र के विचार के अनुसार उसे मनुष्य में गण नहीं किया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? कहा जाता है नराधम। नर का मतलब क्या है? नर का मतलब है मनुष्य, और अधम का मतलब उसके नीचे, मतलब शरीर जब भी मनुष्य का है, बल्कि वो अब तक मनुष्य नहीं बना है, इंसान नहीं बना है, आदमी नहीं बना है। मनुष्य वो कब तक बन सकता है? जब तक, जब से ब्रह्म जिज्ञासा का उदय होता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब जब ये मनुष्य शरीर मिला है तो क्या करना चाहिए? ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब क्या होता है? आत्मिक, आत्मा के बारे में जो प्रश्न है, अर्थात मैं कौन हूं, ये शरीर कौन है हमें पता है, बल्कि मैं तो ये शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर से बढ़कर और कुछ हूं, वो कौन है? वो है आत्मा। तो पहली प्रश्न का सवाल क्या मिला? मैं कौन हूं, अर्थात मैं क्या ये शरीर हूं या आत्मा हूं, इसका सवाल क्या मिलेगा? आत्मा। जो अज्ञान है वो बोलेगा कि मैं शरीर हूं, बल्कि जो ज्ञानवान है वो बोलेंगे कि ये शरीर मेरा एक आवरण है, बल्कि मैं हूं आत्मा। जीर्णानि वाशांशी जथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि। जैसे पुराना कपड़ा उतारकर हम नया कपड़ा पहनते हैं, वैसे ही ये शरीर जब पुराना हो जाता है तो ये पुराना शरीर छोड़कर हम एक नया शरीर ग्रहण करते हैं। अर्थात ये शरीर एक कपड़ा जैसा है, यद्यपि हम कपड़ा पहनते हैं, बल्कि हमारा स्वरूप में हम क्या सोचते हैं कि मैं कपड़ा हूं या मैं कपड़ा पहना हुआ हूं, वैसे ही मैं इस शरीर धारण किया हूं, मैं शरीर नहीं हूं। यह है आध्यात्मिक ज्ञान का पहला कदम, पहला एडवांसमेंट। और उसके पश्चात प्रश्न होता है कि मैं कहां से आया हूं, मैं कौन हूं, यह है पहला प्रश्न। मैं कहां से आया हूं, इसका जवाब क्या होगा? मैं क्या, मेरा सृष्टि, मेरा उत्पत्ति क्या इस भौतिक जगत में हुआ है, ना क्या भौतिक जगत के परे और एक जगह है जहां से मैं आया हूं। तो हमारा वैदिक ज्ञान का विचार इस विषय में होता है। जैसे जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन में एनालिटिकल स्टडी, मतलब संख्या के द्वारा गिना जाता है, इसलिए उसका नाम है सांख्य। विश्लेषण हो रहा है इस भौतिक जगत का, एनालिटिकल स्टडी, विश्लेषण। ये जो जगत हमारे सामने जो हम देख रहे हैं, ये जगत कैसी है, कि इस जगत का सृष्टि कैसे हुआ है, पांच उपादान के द्वारा, पांच स्थूल उपादान और तीन सूक्ष्म उपादान। तो ये पांच स्थूल उपादान क्या है, पांच स्थूल वस्तु जिसके द्वारा इस जगत का रचना हुआ है, वो है मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत। और हमको पांच इंद्रियां हैं, आंखें, कान, नाक, जीभा और त्वचा। तो ये पांच इंद्रियां का साथ जब पांच भौतिक पदार्थ का संयोग होता है, इसकी कारण पांच इंद्रिया का विषय का उत्पत्ति होता है। यह सांख्य दर्शन का बहुत ही सुंदर निर्णय है, विचार है। जैसे हमारे आंखें हैं और अग्नि है, आग है। आग एक वस्तु है और हमारा इंद्रिया है आंखें। आंखें के साथ जब अग्नि का संयोग होता है तब रूप का प्रकाश होता है। जब आकाश के साथ हमारा कान का संयोग होता है तब शब्द का उत्पत्ति होता है। हमारे त्वचा के साथ जब वायु का संयोग होता है तो स्पर्श का अनुभूति का उत्पत्ति होता है। जब जीवा के स्वाद पानी का संयोग होता है तो रस का उत्पत्ति होता है। और नाक के साथ जब मिट्टी का संयोग होता है तो गंध का प्रकाश होता है। ऐसे पंच इंद्रिया के साथ पंच विषय का जो संयोग होता है उसके कारण पंच महाभूत पंच विषय का उत्पत्ति होता है, रूप रस शब्द स्पर्श और गंध। तो कितना हुआ, पांच महाभूत पांच इंद्रिया का विषय मिला के कितना होता है, 15। और हमारे पांच कर्मेंद्रिय है, काम करने वाला इंद्रिय है, वो है पाद पानी पायु उदर उपस्थ, पैर हाथ पेट उदर उपस्थ पायु और उपस्थ। तो ये पांच कर्मेंद्रिय हुआ कितना, 20। और इसके पश्चात विचार हो रहा है तीन सूक्ष्म पदार्थ है, वो है मन बुद्धि और अहंकार। 20 और 3 मिला के हुआ 23। ऐसे देखिए कैसे सांख्य का विचार हो रहा है और उसके पश्चात विचार करते हैं जिस पदार्थ के द्वारा इस भौतिक जगत का सृष्टि हुआ है वो है महत्तत्व। इस 24 तत्व के द्वारा इस भौतिक जगत का पूर्ण विश्लेषण हो गए हुआ है, बल्कि उसके पश्चात हमारे जो महान मुनि ऋषिगण थे जो मननशील चिंताशील दार्शनिक थे उन्होंने विचार करते हैं कि ये जो 24 पदार्थ जो हैं ये भौतिक हैं, बल्कि इसको देखने वाला है और कोई। ये पदार्थ तब तक ही होता है, इसका उपलब्धि तब तक ही होता है जब तक कोई इसको उपलब्ध को इसको अनुभव करते हैं देखते हैं। वो देखने वाला कौन है, देखने वाला है हम देख रहे हैं। तो देखिए 24 तत्वों के द्वारा इस भौतिक जगत का पूर्ण विश्लेषण हो चुका है, बल्कि वहां इस 24 में मैं नहीं था। तो मैं जो हूं तो मैं किस भौतिक जगत का हूं या इस भौतिक जगत के परे और कोई जगत से हम आए हैं। देखिए इसका विचार भगवान भगवत गीता में बहुत सुंदर रूप से किए हैं। भौतिक जगत का विश्लेषण भगवत गीता में भगवान केवल 8 पदार्थ के द्वारा किए थे, भूमि रापो अनलो वायु खं मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति अंग में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। मतलब इस बाहर के जगत जो है भिन्ना प्रकृति, भगवान से भिन्न जो ये भौतिक जगत है इसका रचना हुआ है 8 पदार्थ के द्वारा। वो कौन है, मिट्टी पानी अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि और अहंकार। इसके पश्चात भगवान कहते हैं अपरयाम इतस्तन्नां प्रकृतिं विद्धि मे पराम। ये सब निकृष्ट प्रकृति है जो हम उपलब्धि कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, बल्कि देखने वाला कौन है? आत्मा। जीव भूतान धार्यते जगत, जो इसको अनुभव कर रहे हैं, उपलब्धि कर रहे हैं, धारण कर रहा है, वो जो है वो आत्मा आया है भगवान के परा प्रकृति से। ये है अपरा प्रकृति, निकृष्ट प्रकृति, और हम सब आए हैं भगवान का उत्कृष्ट प्रकृति या चिन्मय जगत से। तो वैसे देखिए आत्मा के बारे में कितने सुंदर रूप से आत्मा का आविर्भाव कहां से हुआ है, आत्मा कहां से आए हैं, इसका विश्लेषण हमारे शास्त्र में कितना सुंदर रूप से हुआ है। तो मैं कौन हूं, पर इसको जवाब मिल चुका है ना, मैं कौन हूं? आत्मा। हम कहां से आए हैं? हाँ, इस भौतिक जगत में हमारा उत्पत्ति हुआ है नहीं, हम कहां से आए हैं? आध्यात्मिक जगत से आए हैं, भगवत धाम से आए हैं। भौतिक जगत में इस शरीर का सृष्टि हुआ है, पिता माता के माध्यम यह शरीर का उत्पत्ति हुआ है। बल्कि यद्यपि यह शरीर पिता माता के माध्यम मिला है, बल्कि यह शरीर में शरीर किसका शरीर है? आत्मा का शरीर है। हम कहते हैं मेरा शरीर, तो मेरा शरीर का मतलब मैं कौन हूं? जब मैं कहता हूं कि मेरा शरीर, तब क्या मैं सोचते हैं कि मैं शरीर? हाँ, मेरा शरीर सोचते हैं। तो मैं कौन हूं? आत्मा। ये शरीर का मालिक कौन है? आत्मा। भगवद गीता के शुरुआत में भगवान जब अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, भगवान अर्जुन को भी ये बताए थे कि ये शरीर और शरीरी शरीर के मालिक कौन है? जो हम कहते हैं मैं देही नस्मिन जथा देहे, देही और देहा, शरीर शरीरी। तो ये शारीरिक या देही का, ये देह में इसका परिवर्तन होता है, कौमार यौवन जड़ा, बचपन कुमार अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, उसके पर ऐसे शरीर का परिवर्तन होता है। यद्यपि शरीर का परिवर्तन होता है, परंतु हम, मेरा परिवर्तन होता है, हमारा परिवर्तन होता है, हम तो वही रह जाते हैं जो हम हर समय थे। 5 साल का मैं और 50 साल का मैं एक मैं हूं, है ना। यद्यपि 5 साल का शरीर और 50 साल का शरीर एकदम भिन्न है। तो वैसे हमारे शास्त्र के माध्यम भगवान के निर्देश के अनुसार हमें पता चलता है कि ये हमारा स्वरूप में हम आत्मा है, और वो आत्मा चिन्मय जगत से आए हैं, आध्यात्मिक जगत से आए हैं, भगवत धाम से आए हैं। और इसके पश्चात प्रश्न आता है हमें क्या करना चाहिए। मैं आत्मा हूं, मैं भगवत धाम से आया हूं, तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए हमें? जहां से हम आए हैं वहां वापस जाने का कोशिश करना चाहिए, है ना। इस सिलसिले में प्रभुपाद एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिए हैं कि मछली कहां का पानी, कहां का जीव है? पानी का। तो मछली को अगर हम जमीन पे लाते हैं तो मछली का हाल कैसा होता है, तड़पने लगता है ना, इतना कष्ट होता है उसको। तो जमीन में आया हुआ मछली को आप अगर बोलेंगे चलो हा? तुम्हारे लिए मैं एक बहुत बड़ा मकान बनाया है और वहां तुम्हारे लिए खाने के लिए बहुत सारे आयोजन हुआ है, उस वहां पर तुमको इतने सारे सुजोग मिलेगा, आराम मिलेगा, मछली क्या बोलेगा? प्रासाद में रहने से मछली का कोई असल सुख मिलेगा? जितने सारे खाने पीने को हम देते हैं उससे मछली का कुछ फायदा होगा? नहीं। कितने ही सारे आयोजन मछली के आराम के लिए इस जमीन पर हम ना करें, मछली का तृप्ति नहीं होगा। परंतु जब हम उस मछली को लेकर पानी में डाल देते हैं तो क्या होता है, वो आनंद से मग्न होकर पानी के गहरा पानी में चला जाता है ना। तो मछली का, पानी का, मछली का जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? पानी में रहना। तो वैसे ही हम आध्यात्मिक जगत के हैं, पानी के मछली जैसे जमीन में आने से तड़पता है, वैसे हम भी इस भौतिक जगत में आकर तड़प रहे हैं। जो कुछ जो हमारा असल चाहना है वो हमें मिल नहीं रहा है। हम कितने सारे चीजें चाहते हैं, सबसे पहले हम क्या चाहते हैं, रुपया चाहते हैं। हर व्यक्ति रुपया मांगते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि वो सोचता है रुपया मिलने से सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, रुपया के द्वारा इस भौतिक जगत का सब कुछ हम प्राप्त हो सकते हैं, परंतु रुपया के द्वारा चिन्मय आनंद कभी मिल सकता है? नहीं। हमारा असल चाहना जो है वो आत्मा का चाहना है। हमारा असल चाहना, आसक्ति क्या है? भगवान के साथ संपर्क जोड़ना। भगवान के साथ जब तक हम संपर्क न जोड़ते हैं, चाहे भौतिक जगत में हमें कितना कुछ मिलते रहे, फिर हमारा आत्मा प्रसन्न नहीं होगी। जैसे होता है, ऐसा नहीं कि रुपया मिलने से ही आनंद मिलेगा, परंतु हम देखते हैं जो बहुत सारे रईस आदमी हैं वो उतना ही ज्यादा तड़पते हैं, उतना ही कष्ट प्राप्त होते हैं। इसलिए रुपया पैसा कम होना ही अच्छा है, क्योंकि तब हमारा सर दर्द भी कम होगा। रुपया मिलने से क्या मिलता है? सर का दर्द मिलता है, हेडेक्स। क्यों? क्योंकि जब हमें रुपया मिलता है तब सरकार का जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो हमारे पीछे पड़ जाता है, टैक्स लाओ। हम अगर 50 रुपया कमाता है तो बोलता है चलो 25 रुपया तुमको देना पड़ेगा, और हम सोचते हैं देखो कितना कष्ट करके हम 50 रुपया कमाया था और ये कह रहा है कि 25 रुपया उसको देना पड़ेगा। तब हम सोचते हैं कैसे हम 25 रुपया की जगह 5 रुपया दे सकते हैं। तो शुरू हुआ ना सरदर्द। विशेष रूप से जब हम विदेशों में देखते हैं लोग कितने कष्ट भोग रहे हैं, यद्यपि पैसे हैं, पैसा बहुत है उन लोगों को पास, बल्कि मन में शांति नहीं है, दिल में आनंद नहीं है, तड़प रहे हैं, रात को सो नहीं सकते हैं, सोने के लिए उसको ड्रग्स लेना पड़ता है, खाना नहीं खा सकते हैं, इतना चिंता उन लोगों का। और अंत में क्या करते हैं, अपने आप को नष्ट कर देते, आत्महत्या कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत का जो कुछ है इसके द्वारा हमारा मन का शांति और दिल का आनंद प्राप्त तो नहीं हो सकता है। इसलिए क्या करना चाहिए, हमारा जो असल चाहना है, जैसे पानी मछली क्या चाहता है, मछली पानी में रहना चाहता है, वैसे ही हम भगवत धाम में वापस जाना चाहते हैं। और भगवत धाम में वापस जाने का तरीका कैसा है, किस रूप से, किस तरह हम भगवान के पास वापस जा सकते हैं, भगवान के साथ प्यार की संपर्क जोड़ने के माध्यम। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसका जवाब क्या है, क्या करना चाहिए, भगवान के साथ संपर्क जोड़ना चाहिए। जब हम भगवान के साथ संपर्क जोड़ लेते हैं तो हमारा जीवन आनंद से भर जाता है। क्यों? हम आनंद का अन्वेषण है, हम आनंद के प्यासी हैं। तो आनंद कहां मिलेगा, जहां आनंद है वहां जाने से हमें आनंद मिलेगा। तो आनंद के स्रोत कौन है, आनंद के आधार कौन है, परमेश्वर भगवान आनंदमय भगवान है, आनंदमय, और हम सब आनंद के प्यासी हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जहां आनंद है उनके पास जाना चाहिए। यही है मनुष्य जीवन का उद्देश्य। जब मनुष्य ने इस जीवन को अपनाता है तो उसका जन्म सफल हो जाता है। जीवन अपना सफल बना ले, भज रे हरि का नाम रे, भज रे हरि का नाम। ये हरि का नाम क्या है, हरि का नाम है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वैसे हरे कृष्ण कीर्तन के माध्यम जब हम भगवान के साथ हमारा संपर्क जोड़ते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो हमें अब क्या करना चाहिए, हमारा जीवन में बहुत आसक्ति रहता है। आसक्ति का मतलब क्या है, दिल जो चाहता है। भौतिक जगत में दिल बहुत कुछ चाहता है। भौतिक जगत में मनुष्य ने क्या चाहते हैं, धनम जनम सुंदरीम। इसके प्रति उसका आसक्ति होता है। बल्कि ये आसक्ति के कारण उसका ताप मिलता है, के कष्ट मिलता है। बल्कि जब ये आसक्ति, जो हृदय दिल का जो चाहना, वो जब भगवान के प्रति जब होता है, जब दिल हर समय किसी न किसी को चाहते हैं, मतलब हमारा दिल में प्यार का एक आकांक्षा रहता है, प्यार का, प्यार करने का इच्छा इरादा रहता है। हर जीव के दिल में ये है, प्यार की वासना। क्योंकि जहां भी आत्मा है वहां चेतना है, जहां चेतना है वहां ही प्यार का प्यास है। तो ये प्यार के प्रति, प्यार के लिए जो ये प्यास जब भगवान के लिए होता है तब हमारा जीवन सफल हो जाता है। क्योंकि इस आसक्ति के कारण हम भौतिक जगत के बंधन से मुक्त होकर भगवान के पास वापस जा सकते हैं। तो अब बताइए मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। अच्छा, मैं और ऐसे पूछूंगा, आप कौन सोचते हैं भौतिक जगत का उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य होना चाहिए धन कमाना, जन्म कमाना और सुंदरी को प्राप्ति होना। कौन सोचते हैं कि ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, एक भी नहीं। बहुत अच्छा। और कौन सोचते हैं भगवान के साथ संपर्क जोड़ना मतलब भगवान के प्रति अपना दिल के प्यार अर्पण करके उनके प्रति हमारा संपर्क स्थापन करना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका जीवन सफल हो चुका है क्योंकि आप भगवान के साथ आपका संपर्क जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जब इसका शुरुआत होता है, शुरुआत से ही मनुष्य जीवन का सार्थक बन जाता है। जीवन अपना सफल बना ले, भज रे हरि का नाम ले। भज गोविंद, भज गोविंद, भज गोविंद का नाम ले। हरे कृष्ण गौर प्रेमानंदे हरि हरि। कोई प्रश्न है किसी को? अगर प्रश्न है तो हम कुछ समय के लिए प्रश्न उत्तर का आयोजन कर सकते हैं। अगर प्रश्न है तो आप हाथ उठा सकते हैं, तो आप माइक दे देंगे आपको। ये प्रश्न नहीं, एक आदेश मिला है। रेस्पेक्टेड महाराज, काइंडली सिंग अ वैष्णव सॉन्ग। ठीक है, हाँ जरूर गाएंगे, हम तैयार होके ही आए हैं। अगर प्रश्न नहीं है, अच्छा, देयर इज अ क्वेश्चन, गिव द माइक टू, आप हाथ उठाइए जो, हाँ ओके। हाँ आप ठीक है।
हे कृष्णा महाराज, आप बता रहे थे कि नाक और मिट्टी मिलने से गंध का सृजन होता है।
हाँ क्या हुआ?
नाक और मिट्टी के संयोग से गंध का सृजन होता है।
हाँ।
पर महाराज ऐसा भी तो हो सकता है कि नाक और हवा से भी तो गंध का सृजन हो सकता है, मतलब देर आर मोर देन मोर कॉम्बिनेशंस पॉसिबल।
ओके, गुड, वेरी गुड पॉइंट। ये हवा जो है वो वायु नहीं है, ये हवा जो है वो गैसियस। भौतिक पदार्थ का तीन स्थिति होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। गैस जैसे पानी जब सख्त है तो अब बर्फ, जो तरल है तो पानी, और जब बाष्प हो जाता है तो ये जो है ये है जो हमारा जो वैदिक विचार जो है, मिट्टी पानी अग्नि वायु, वो वायु ये गैसियस सब्सटेंस नहीं है। वायु है प्राण अपान समान वैन और उदान, ये है पंच वायु जिसके द्वारा शरीर के कार्य संपादन होता है। जैसे प्राण वायु ये आत्मा को शरीर में रखते हैं, अपान वायु के द्वारा शरीर के जो प्रयोजन नहीं है जो पदार्थ है उसको त्याग देते हैं। वैसे समान वायु, व्यन वायु, व्यन वायु को द्वारा ये जो अनुभूति जो है, इंद्रिय अनुभूति, उसको कार्य होता है, इंद्रिय नर्वस सिस्टम का एक्टिविटी संपादन होता है। तो ऐसे पंच वायु का कार्य होता है। बल्कि आप जो बोल रहे हैं कि गंध जो है वो असल में मिट्टी से नहीं आता है, वायु से न, वायु है मीडियम जिसके द्वारा गंध कैरी इज अ कैरियर ऑफ गंध। बल्कि गंध का जो उत्पत्ति है वो मिट्टी से होता है और उसका अनुभूति ग्रहण होता है कान नाक के द्वारा, है ना। हम जो सूखते हैं गंध का वो नाक के द्वारा होता है, बल्कि आप जो बोले हैं सही बात है, उसका जो कैरियर जो है वो है वायु। वायु का मतलब एयर, गैसियस मीडियम।
धन्यवाद महाराज। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। एक प्रश्न यह है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज, आप जैसे उदाहरण दे रहे थे कि मछली जैसे तड़पती है पानी में जाने के लिए, तो सभी जीव भगवान से आए हुए हैं, बट ऐसा होता है कि मछली जैसा तड़पता है पानी में जाने के लिए, वैसा जीव ऐसा तड़पता नहीं है भगवान की तरफ जाने के लिए। तो वैसा तड़पने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो मछली जैसे तड़पता है वैसा वो पानी में जाने के लिए?
यस, वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। हम तड़पते हैं बल्कि वो हम समझते नहीं है, क्योंकि माया के द्वारा हमारा जो चेतना वो खो गया है। ये जो भावना जो है ये हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो क्या करना चाहिए? ये माया से मुक्ति के लिए, माया का जो प्रभाव है इससे मुक्त होने के लिए साधुओं को संग करना चाहिए। साधु संग मतलब भगवान के जो भक्त हैं उन लोगों को संग करना चाहिए। भक्तों के संग में भक्ति का महिमा, भगवान का महात्म्य और भगवान के साथ संपर्क जोड़ने का उद्देश्य हम प्राप्त होते हैं। इसलिए इस तड़पने के, ये भगवान के पास जाने के लिए जो ये जो वासना, इसको बढ़ाने के लिए हमें साधुओं का साथ संग करना चाहिए। साधु संग, साधु संग। सर्वशास्त्र कय लव मात्र साधु संगे सर्वसिद्धि। हरे कृष्ण। अच्छा, एक प्रश्न आपको है, माइक सामने दे दीजिए।
दंडवत महाराज, भागवतम में जो है अजामिल और भरत महाराज के चरित्र थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है उसमें। आपने कहा कि भगवान के साथ संबंध हम अगर स्थापित करें तो भगवत धाम जाने में आसानी होती है, तो अजामिल के चरित्र में देखा गया तो अज्ञात स्वीकृति हुई, उसे नारायण नाम अपने बेटे का लिया और उसको एक जन्म में ही भगवत प्राप्ति हो गई, भले ही हरिद्वार में 15 वर्ष तक तपस्या किया। लेकिन भरत महाराज ने अपना सब कुछ जो है त्याग कर दिया, परित्याग करके और जंगल में गए, वहां पर एक्सीडेंटली उम्रिक शौक से उनका प्रेम हो गया, उनको 3 जन्म लेना पड़ा। तो ऐसा भक्त के जीवन में भी हो सकता है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं भगवत धाम जाने के लिए, भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए, लेकिन ऐसी कोई ऐसा व्यवधान आ जाएगा मृत्यु के समय में, तो इन दोनों के चरित्र को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए उससे?
देखिए, भगवान के धाम में, भगवत के, भगवान के पास जाने का इच्छा का ही उन्मेष होना चाहिए हमें। कब हम जाएंगे, कैसे जाएंगे, उसके बारे में हम भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। मतलब भगवान के शरण लेने का मतलब होता है कि अब भगवान के पास ही हम अपने आप को समर्पण कर दिया, और भगवान हमें संभालेंगे, है ना। हम अगर बोलेंगे भगवान इस जन्म में ही हमको जान लेना चाहिए, तो क्या हम भगवान को शरण लेना है, शरण ले रहे हैं, या भगवान को अपना दास बना रहे हैं, नौकर बना रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं भगवान को, चलो एक जन्म में लेना पड़ेगा, है ना। शरण लेने का मतलब है ममो जन्मनि जन्मनि शरे भवतात् भक्ति रहितु कित्वा। मैं तो केवल चाहता हूं कि जन्म जन्मांतर में मैं केवल आप ही का दास बन सकता हूं, आपको भक्ति प्राप्त हो सकता हूं, और बाकी ये आपका इच्छा है। आप हमको लेके क्या करेंगे ये विचार आप कीजिए। इस सिलसिले में एक सुंदर दृष्टांत ये है, एक दिन नारद मुनि इस पृथ्वी पर आए थे, तो वहां एक योगी, आप शायद जानते होंगे इस, फिर से मैं बता रहा हूं, एक योगी इतना कठोर तपस्या कर रहा था कि उसको चारों तरफ एक उई का डिब्बी बन गया था, मतलब एंट हिल बन गया। तो नारद मुनि को जब देखा हो, बोला नारद मुनि आप तो भगवान के पास जाते हैं, तो उनको पूछना कब हमको उन्होंने अपने पास बुलाएंगे। नारद मुनि बोला ठीक है मैं पूछूंगा। और थोड़े दूर जाने के पश्चात नारद मुनि के साथ एक मूची का मुलाकात हुआ। मूची जूता सिलाई कर रहा था, तो मूची ने नारद मुनि को पूछा, नारद मुनि आप तो भगवान के पास जाते हैं, तो पूछना कब हमको उन्होंने याद करेंगे, अपने पास बुलाएंगे। नारद मुनि बोला ठीक है मैं पूछूंगा। तो वैकुंठ से नारद मुनि फिर जब वापस आया, तो जोगी ने पूछा उनको कब आप पूछे थे भगवान को। नारद मुनि बताए हाँ मैं भगवान को पूछा था, और भगवान बोला फिर एक जन्म तुमको और आना पड़ेगा। तो बहुत गुस्सा हो गया, और एक जन्म, इतना कठोर तपस्या मैं किया हूं, ये कभी नहीं हो सकता, इस जन्म में ही भगवान को हमको लेना पड़ेगा। नारद मुनि बोला देखो मैं तो भगवान को आप पूछने को बोला, और मैं बताया भगवान क्या बोला, तो बोला आप झूठ बोल रहे हैं, भगवान के पास नहीं गए थे। तो बोला आप अगर गए थे तो आप क्या भगवान उस समय क्या कर रहे थे। तो नारद मुनि ने बोला उस समय भगवान सुई का जो आंखें हैं उसके बीच से एक हाथी को ये कर रहा था। बोला मैं बोला कभी ये हो सकता है, आप झूठ बोल रहे हैं, भगवान के पास आप नहीं गए थे। तो उसके पश्चात वो मोची के पास आया, तो मोची ने भी पूछा, तो नारद मुनि बोला कि भगवान बोला कि ये जो इमली के पेड़ हैं, इसमें जितने पत्ते हैं उतने बार तुमको जन्म लेना पड़ेगा, उसके पश्चात तुमको ये मिलेगा। तो नारद मुनि ने जब बोला तो वो नाचने लगा, कभी ना कभी भगवान हमें याद करेंगे और अपने पास बुलाएंगे। तब उस इमली का पेड़ से सारे पत्ता गिर गया, और वैकुंठ से रथ आ गया वो मोची को वैकुंठ में लेने के लिए। हम कब भगवान हमें अपने पास बुलाएंगे इस बारे में हम भगवान के ऊपर ही छोड़ देते हैं। और देखिए भक्ति मार्ग जब हम अपनाते हैं तब तो हम भगवान के पास ही आ जाते हैं। अगर हम पूछें कि भगवान के पास जाके तुम क्या करोगे, भगवान के पास जाकर आप लोग क्या करेंगे, तो आप बताइए क्या करेंगे। हाँ भगवान का नाम कीर्तन करेंगे, भगवान का प्रसाद खाएंगे और थोड़ा बहुत भगवान की सेवा करेंगे, तो वो अगर करना है तो वो तो हम यहां ही कर रहे हैं। तो वहां जाकर ये काम ही अगर करते रहेंगे तो यहां से और वहां में कोई अंतर नहीं है। हमारे लिए जो भगवान का भक्त बन जाता है उनके लिए इस भौतिक जगत ही वैकुंठ बन जाता है। वह अलग से भगवान के पास जाने का जरूरत नहीं होता है, हम भगवान के पास ऐसे ही चले जाते हैं, क्योंकि हमारा स्थिति भगवत भक्ति के द्वारा, भगवत भक्ति के माध्यम चिन्मय बन जाता है, तब और अलग से भगवान के पास जाने का कोई कोशिश करने का जरूरत नहीं होता है। हरे कृष्णा। यस,
हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। एक्चुअली मेरा एक प्रश्न है आपसे कि जनरली बोलते हैं सीधे हाथ से सारा पूजा पाठ का कर्म या कोई भी कर्म करना चाहिए, लेकिन अगर किसी का मास्टर हैंड लेफ्ट है तो वो ऐसे में क्या करे?
किसी को
माने मास्टर हैंड लेफ्ट, लेफ्ट से सारा काम करता है कोई इंसान, खाना भी लेफ्ट से खाए, लिखने का काम लेफ्ट से है,
लेफ्ट हैंड।
हाँ, तो फिर उसके लिए सीधे हाथ पर पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करें? क्योंकि समाज में ऐसा है कि सीधे हाथ से नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ गलत कर रहे हैं।
जब भक्ति होता है तो भगवान विचार नहीं करते हैं ये बायां हाथ से हो रहा है या दाहिना हाथ से हो रहा है। हरे कृष्णा, गौर प्रेमानंदे हरे। हरे कृष्णा। तो हम अब एक भजन गाएंगे जो श्रीमद् भागवत से मिला है, गोपी गीता। भगवान पूर्णिमा में, रात पूर्णिमा के रात में भगवान बांसुरी बजाकर गोपियों को बुलाया। बुलाया मतलब बांसुरी, भगवान वृंदावन में अपना बांसुरी बजाने लगा और वो सुनते ही सारे गोपियां एकदम पागलिनी जैसी भगवान की ओर दौड़ पड़े। जब भगवान के पास उन्होंने आया, भगवान उनको समझाने का कोशिश किया, देखो तुम युवती हो, ऐसे रात को जंगल में आना, वन में आना तुम्हारे लिए ठीक नहीं हुआ, घर छोड़ के तुम लोग घर चले जाओ। तब गोपियां ने भगवान को बोलने लगा कि देखिए आप जब बांसुरी बजाए तब हमारे लिए और घर में स्थिर रहना संभव नहीं रह पड़ा, आप ही के कारण हम सब कुछ छोड़ के आए हैं, आपके कारण मैं हम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो ऐसे आप हमें वापस जाने का मत कहना, जाने के लिए मत कहिए। तब भगवान गोपिया के साथ नाचने लगे। अचानक भगवान सब गोपिया को छोड़कर चले गए, तो गोपिया ने जब भगवान को ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते जमुना के किनारे में आकर सब अपना मनोभाव भगवान के प्रति व्यक्त करना शुरू किए थे। तो वो जो मनोभाव जो गोपियां का व्यक्त हुआ है वो श्रीमद् भागवतम का 31 अध्याय में गोपी गीता के रूप में इसका वर्णन हुआ है। तो हम इसका नौ इसका कोई श्लोक हम गाएंगे. सबसे पहले तो हम नवम श्लोक गाएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि इस नवम श्लोक में श्रील कृष्ण भक्ति का प्रचार का महिमा वर्णन हुआ है और यहां सारा दुनिया भर कृष्ण भक्ति का प्रचार का एक इंगित भी मिल रहा है. तो इसलिए हम सोचते हैं कि ये नवम श्लोक जो है, इस श्लोक के द्वारा श्रील प्रभुपाद का महिमा का कीर्तन हो रहा है. तो इसलिए हम नवम श्लोक पहले गाते हैं, उसके बाद प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्लोक गाएंगे. जो है नवम श्लोक है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भी रीड़ितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूवि गृणंती ये भूरिदा जना. अर्थात हे भगवान, आपका कथा रूप अमृत इस भौतिक जगत में संतप्त क्लेश प्राप्त जो जीव, उसको ये ताप का, ये क्लेश का प्रशमन करता है. तप्त जीवनम मा और कभी भी रीड़िता महान भक्तगण महापुरुषगण आपका महिमा कीर्तन करते हैं. आपका महिमा कीर्तन महापुरुषों ने करते हैं, महान भक्तगण करते हैं. कभी भीड़ ईड़ितम कल्म शाप अहम इस कथामृत श्रवण करने से सारे पाप दूर हो जाता है. कल्मश अपहनम पाप को, गंदगी को चुरा देता है, निकाल देता है. कल्म शाप अहम श्रवण मंगलम और ये आपका कथामृत श्रवण करने से सर्वांगीण मंगल साधन होता है. श्रवण मंगलम और श्रीमदाततम ये सारे सौभाग्य प्रदान करता है. और जो व्यक्ति इस कृष्ण कथामृत सारा दुनिया भर प्रचार करते हैं वो सबसे श्रेष्ठ दाता है, महा बदान्य. कवि भी रीड़ितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूवि गृणंती जे भूरिदा जना. वो है भूरिदा, महान. भूरी का मतलब विशाल, महान दाता है वो. तो ये चार पांच श्लोक हम आप कीर्तन करेंगे.